अरे भाई, जब हमारे फ़ायदे के दिन हैं तो हम दुकान बंद करके जा रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे बंदा कबाब की दुकान खोले और फिर जल्दी दुकान बंद करके खाना खाने चला जाए। अरे मेरे भाई हुसैन साहब, सभी हाजी हज से वापस आ रहे हैं। कुछ दिनों बाद आशूरा भी है और हम दुकान बंद कर रहे हैं। हाँ, क्या नाम उसका, वो ख़रीदार, उसके मुंह में बस नहीं रखा हुआ है। जितना भी हाजी साहब ने कहा, उसने कहा नहीं, नहीं तो बस नहीं। अजीब ज़माना है।
हाजी साहब ने बताया नहीं क्या करना चाह रहे हैं।
अरे भाई, इन दिनों में तो हाजी साहब को हमने 2 मिनट भी नहीं देखा। आते थे, मुंह दिखाते थे और चले जाते थे। आपने तो अपना मुंह भी नहीं दिखाया। मैं रह गया और इतने सारे काम, पता नहीं इतने सारे काम कैसे निपटेंगे। देखिए हुसैन साहब, मेरे भाई, मैं किसी काम में मुदाखलत करना नहीं चाह रहा हूँ। मुदाखलत का मतलब एक झमेला है। बस मैं ये चाह रहा हूँ कि आप हाजी साहब के साथ जाइए, उनके साथ बैठिए और उनसे बात कीजिए।
कैसी बात?
देखिए, खुदा गवाह है कि मैं बिल्कुल मुदाखलत करना नहीं चाह रहा हूँ। मैं आप लोगों का खादिम हूँ। हाजी साहब की हालत बहुत ही बुरी है। एक तरफ इमाम बारगा और इस दुकान और हामिद का मसला, और दूसरी तरफ से अमीर अब्बास का मसला। वो तो अपने आप को कसूरवार समझ रहे हैं,
अब वो बच्चे तो नहीं है।
लेकिन उनका दिल बिल्कुल बच्चों की तरह है। क्योंकि वो खुद अपने आप को बहुत ले दे के रहते हैं, इसलिए उनके हाल दिल का किसी को पता नहीं चलता।
फिर तुम्हें कैसे पता चला?
मुझे मालूम है, तभी कह रहा हूँ। आपको भी मालूम है। 2 मिनट उनकी आंखों में आंखें डालकर देखिए, सब कुछ पता चल जाएगा। बेचारे पिछले कुछ दिनों में 10 साल बूढ़े हो गए हैं।
मैं खुद 100 साल का बूढ़ा हो चुका हूं।
सलाम अलैकुम हाजी साहब।
वालेकुम अस्सलाम। तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
हाजी साहब, मैं अभी कुछ दिनों पहले तक यहीं काम करता था।
अब क्या, अब तो अगले चंद दिनों तक हमारी दुकान पर ताले पड़े रहेंगे।
मर्दूद शैतान की दुकान बंद होनी चाहिए। बहुत होगा तो इस दुकान को छोड़कर 4 दुकान उस तरफ चले जाएंगे। तुम बिल्कुल परेशान ना हो, कुछ भी हो जाए हम सब साथ हैं। कुछ अरसे परेशानी और सख्ती में गुजारा कर लेंगे ताकि मामला संभल जाएं।
कैसी परेशानी और कैसे मामलात बाबा?
खलील, थोड़ी देर जरा काम छोड़कर इधर
जी।
आओ,
हाजी
तुमसे
साहब,
काम है। अंजुमन में एक शख्स था, जब कभी तस्करा छिड़ता तो हसरत भरे अंदाज में कहता, काश मैं भी सईदुल शोहदा के असहाब में से होता और जोहरे आशूरा इमाम के सामने ढाल बनकर खड़ा हो जाता ताकि इमाम आराम से नमाज पढ़ते और जितने भी दुश्मन के तीर हैं मेरे सीने पर आकर लगते। शुरू में उसकी गुन थी और तमन्ना और हसरत आहिस्ता आहिस्ता दावा भी करने लगा। एक रात उसने ख्वाब में देखा कि जोहरे आशूरा में कत्लगाह के गड़े में इमाम उसको हुक्म कर रहे हैं कि खड़े हो जा ताकि मैं नमाज पढ़ सकूं। वो शख्स खुद रोते हुए कह रहा था कि मैंने देखा कि एक तीर दूर से मेरी तरफ आ रहा है। मेरा ध्यान था कि ये इमाम को नहीं लगना चाहिए, लेकिन एकदम मैं तीर के सामने से हट गया और तीर सीधा इमाम के सीने में उतर गया। अगर सिर्फ दावे पर है तो सब करबलाई है, लेकिन कौन है जो खरा उतरे? मैं भी तुम लोग कोई गैर नहीं हो कहता हूं। मुझे भी यकीन हो गया था कि मैं कुछ हूं, हकीकत में समझता था कि मैं अंजुमन का सब कुछ बन गया हूं और इमाम हुसैन की जिंदगी के इस मरहले में मेरा भी कुछ किरदार है। लेकिन जब पीछे पलट कर देखा तो पता चला कि मैंने भूले में कितनी बड़ी गलतियां की हैं। हमारे उस दोस्त को एक ख्वाब से सबक मिल गया था, लेकिन मेरे लिए आलम गैर से कोई आना चाहिए ताकि मुझे भी एहसास हो कि भाई जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। हमने शुरू के चंद कदम के बाद ही मैदान खाली कर दिया। ये सब मुहर्रम के ताजिए मजालिस और आजादारी इसलिए हैं कि हम अच्छे इंसान बन जाएं, लोगों की मदद करें, लोगों के साथ नेकी करें, मोहब्बत और अच्छे अखलाक के साथ पेश आएं। अगर ये पता चले कि एक अरसा आजादारी करने के बाद अभी तक इंसान नहीं बने और तुम्हारा दिल हजरत असफद की तरह काले का काला है तो कैसा लगेगा? मुझे नहीं मालूम इस कहानी का अंजाम क्या होगा। कुछ भी हो जाए, जो हादसा भी हो जाए, अब इस दफा पीछे नहीं हटना है।
हेलो जी, जी हाँ मिर्ज़ा महमूद, कहाँ? अपने इलाके के थाने में? हाँ 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 जानता हूँ जानता हूँ, परेशान ना हो परेशान ना हो, यहीं है हाजी साहब, यहीं है। ठीक है ठीक है, देखिए 10 मिनट में हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। हाजी साहब, कोई मिल्कियत का डॉक्यूमेंट है?
किसे डॉक्यूमेंट्स चाहिए?
वो अपने कबाड़ वाले मिर्ज़ा महमूद है ना, उनका हाज हुसैन अली मरहूम के नाखलफ बेटे हामिद के साथ झगड़ा हो गया है और इस वक्त दोनों थाने में हैं। अभी शहाब था उनका बेटा, कह रहा था कि हाजी साहब से कह दो हमारी मदद के लिए जल्दी पहुंचे।
हर वक्त कोई ना कोई बुरी खबर सुनने को मिलती है।
अम्मी जान आप यहाँ बैठिए, कहीं थक ना जाए, मैं जाकर देख के आती हूँ।
ठीक है बेटा, जाओ तुम।
सलाम अलैकुम।
इन्हें आपसे कुछ काम है।
अलैकुम अस्सलाम, क्या हाल है? और हाशिम चचा बेहतर हैं?
ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं?
बहुत बहुत शुक्रिया, माफ़ कीजिएगा मुझसे कोई काम था क्योंकि मुझे जल्दी से वार्ड में वापस जाना है।
असल में क्या बताऊँ, ये बाबा की टेस्ट की रिपोर्ट्स है, मैंने सोचा एक नज़र आपको भी दिखा लूँ।
मैं तो एक नर्स हूँ, इस मामले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकती, बेहतर आप उनके डॉक्टर को ही दिखा दें।
आज असल में शायद डॉक्टर नहीं आए।
आए तो हैं, सुबह ही मैंने देखा था उनको, शायद वार्ड में गए हों। आप उनके कमरे के बाहर इंतजार करें, जरूर वापस आ जाएंगे।
अच्छा अच्छा जरूर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया।
खुदा हाफिज। माफ़ कीजिएगा, अभी मेरी वजह से वेट करना पड़ा।
कोई बात नहीं, वो नासिर था ना?
जी, हाशिम चचा का बेटा, उन्हीं के काम के सिलसिले में आया था।
क्या तुम्हारे वार्ड में है?
नहीं, उनके डॉक्टर को ढूंढने, मुझसे पूछ रहे थे कि कुछ पता है कि नहीं। अम्मी जल्दी चलें, भाभी अकेली हैं।
बड़ा शरीफ लड़का नजर आ रहा था, इसका काम और किरदार आज के जवानों जैसा नहीं है। इंजीनियर है क्या?
नहीं मालूम अम्मी, मुझे क्या पता।
पहले भी आया है यहाँ तुम्हारे पास?
एक बार बाबा के साथ आया था और एक बार हाशिम चचा के साथ।
बुरा लड़का नहीं है, मोमिन है, शरीफ, खानदानी और पढ़ा लिखा लगता है। अच्छा बताया नहीं इंजीनियर
है? मैं आप पे कुर्बान जाऊँ, मुझे क्या पता, अभी तो बताया था।
बाबा जान अगर इजाजत दे तो मैं चलाता हूँ।
हामिद, मैं हैरान हूं कि साल में कई दफा चंदा देते हो, मुहर्रम में मजलिस और मातम करते हो, पहले अशरे की 3 रातों में मजलिस करवाते हो। तुम्हारे वालिद हाज हुसैन अली हैं और तुम्हारे दादा करबलाई हसन हज कर चुके हो, साल में कई मरतबा करबला की ज्यारत करते हो, साल में एक दफा मस्जिद जाते हो और फिर अपने से बड़े पर हाथ उठाते हो, वो भी मिर्जा महमूद पर।
देखिए हाजी मुर्तजा, लेकिन बड़ों को भी तो छोटों का एहतराम करना चाहिए।
बहुत बुरा हुआ हाजी साहब, बहुत बुरा हुआ, मैं जानता हूँ। मैं भी आप ही की तरह इसी मोहल्ले में पला बढ़ा हूँ और कभी किसी कोर्ट और थाने में नहीं गया हूँ, लेकिन आपकी मेहरबानियों से यह दूसरी बार है। अभी तक नर्म लहजे के अलावा किसी से बात नहीं की मैंने, अपने भाइयों को भी कभी डांटा नहीं, इस उम्र में भी मुझे गालियाँ देनी नहीं आती। लेकिन जहान दीदा हाज मुर्तजा, जिसने दुनिया की सर्दी और गर्मी देखी है, आज़ादार और तेहरान की इमाम बारगाहों का बादशाह और शान शौकत तो जाहो हशम के मालिक,
फालतू चीज की वजह से अंधे कुएं में एक पत्थर डालता है कि मिर्जा महमूद और हाशिम दरबंदी जैसे सैकड़ों लोग भी निकाल ना सके। हाजी, तुमने ऐसी आग लगाई है कि खामखा और बिला वजह उसने बहुत से लोगों को लपेट में ले लिया।
फोन करके बताया कि मंसूर के बेटे यासिर की हालत ठीक नहीं है, इमाम बारगाह में लगाई गई आग में जल गया है। जानते हो ना उसे? कसम खुदाए मोहम्मद की, अगर उस लड़के को कुछ हुआ तो इस काम के बाईस बानी पर ऐसा कहर ढाऊंगा कि लोग अपनी कहानियों में इसको नकल करते रहेंगे। चलो।
रहीम तो कमाल का है, ये वाकई बड़े काम का आदमी है मुर्तज़ा। आधे दिन में यहया की जेल का भी पता लगा लिया, उसके कर्जदारों को और उसके कर्ज की रकम को भी मालूम कर ली है, और ये भी बताया कि उसके कर्जदारों से बात भी कर ली है।
उससे मिलने गया?
नहीं, फोन पर।
वो गधा पैगाम और फोन से नहीं मानेगा, उससे मिलने जाना होगा, आंखों में आंखें डालकर उसको सीधे रास्ते पर लाना होगा।
फोन पर तो रहीम को काफी खरी खरी सुनाई है, बहुत नाराज था उससे।
हया आंखों में है, अगर सामने वाले को ना देखो तो जो दिल में आएगा वो बोलोगे।
बहरहाल मुर्तजा, उसने कहा कि वो बंदा बहुत सख्त है, किसी भी तरह नहीं मानने वाला है।
ठीक से बात नहीं की होगी ना, जरूर रहीम ने अकड़ कर बात की होगी और उसने भी कह दिया होगा नहीं। अगर किसी से नेकी चाहिए तो अपने आप को गिराना होगा। पहले उसके सामने अपना दुखड़ा सुनाओ ताकि उसका दिल नरम हो जाए, फिर ऐसे बोलो कि वो नाना कह सके।
मैं क्या करूं?
तुम्हारा पैसा है, तुम्हारा माल है, इसके लिए मेहनत की है, नहीं की कुछ भी हो तुम्हारा हक है, मानता हूं, लेकिन कसम से एक बात पर अड़ जाने वाला ऐसा बंदा नहीं देखा। एक घंटे से तुम्हें समझा रहा हूँ और तुम हो के मानने को तैयार नहीं।
मेरे कान पक चुके हैं बातें सुन सुनकर। दिन में कितनी मर्तबा आकर गरीब लड़की के जहेज की सिफारिश फरमाते हैं। इतना सा बच्चा आता है कहता है नौजवानों की अंजुमन है मदद करें। दोबारा इतना बड़ा बच्चा आता है और कहता है जवानों की अंजुमन है मदद करें। कभी एक खातून आती कहती बेटी की शादी होने वाली है लेकिन जहेज नहीं है, देने के लिए खालीन नहीं है। मुझसे क्या मतलब?
सब तो झूठ नहीं बोल रहे होंगे ना, शायद उनमें से कोई सच भी बोल
लेकिन
रहा।
उनका सच भी झूठ होता है, आदमी रखा है मैंने इसके लिए, वो पुलिस की तरह जाता है और उनका पीछा करता है। बंदा यहाँ आता है, रोना धोना मचाता है, पैसे लेके बाहर जाता है, फिर टाई टाई फिश। कोई आता है कहता है नियाज बनवाइए, पैसे नहीं है, अगर हो सके तो मदद करें, फिर जाकर उसी पैसों से अय्याशी करता है। मेरे पास सबूत मौजूद है।
बेहतरामी ना हो, लेकिन जो पैसा शराब और फासिक इंसान को चला जाए जरूर उसमें कोई मसला होगा, वरना पाक को साफ पैसा इतना घूमता है जब तक साफ सुथरे आदमी को ढूंढ ना ले।
चले जाएं, तशरीफ ले जाएं, खुदा हाफिज। अब हमारा पैसा हराम हो गया, मैं अब माफ नहीं करने वाला।
अरे भाई क्या हो गया, हम आपकी शान में गुस्ताखी थोड़ी कर रहे हैं।
बख्त, अल्लाह करे तुम्हारा बख्त नेक हो, लेकिन ये एहसान करने वाले का तरीका नहीं कि इंसान अपने पैसे के पीछे जासूस भेजे ताकि देखे कि कहीं ठीक जगह पहुंचता है या किसी का नशा मिटाता है। अगर अल्लाह आपकी तरह रोजी देने लगता तो आज सब भूख से मर चुके होते।
नाउज़ु बिल्लाह, मैं क्या खुदा हूँ? ये दुनिया पूरी खुदा की है, मैंने मेहनत की है, पाई पाई जोड़ कर रखा है तो ये हजार पैसे बने। हराम की कमाई नहीं है किसी को भी दे दूं और लेकर चला जाए।
आप परेशान ना हो भाई, वक्त आने पर इंशाल्लाह वारिसीन दे देंगे।
बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, इज्जत अफजाई का बहुत शुक्रिया। ये बताएं, आप लोग यहाँ आए हैं अपने दोस्त को जेल से निकलवाने के लिए या मेरी बेइज्जती करने?
अरे तो मेरे प्यारे भाई, आप किसी तरह मान ही नहीं रहे हैं।
मैं माफ करने वाला नहीं हूँ।
कोई बात नहीं,
بس ایک بات بولوں گا پھر بات ختم.
لیکن میں نہ سننا چاہوں تو؟
ڈرو نہیں, پیسے نہیں لگیں گے اس کو سننے کے. مولوی کو جانتے ہو؟
مولوی روڈ کو؟
نہیں, مولوی یعنی مولانا روم. ایک شخص کے عاشق تھے یعنی شمس کے, سنا ہے؟ نہیں سنا؟
ہاں تو
شمس تبریزی. یہ شمس ایک رات کسی بات پر کہیں کھو جاتے ہیں.
آگے بولیں.
موقع پرست اس وقت بھی تھے, ان میں سے کچھ مولانا کے پاس آتے اور کہتے ہیں کہ شمس کو دیکھا ہے, اس نے سلام بھیجا ہے, پیغام بھیجا ہے آپ کو. مولانا بھی ان کو پیسے اور انعام و اکرام دیتے. کوئی ان سے کہتا, ارے بھائی یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں. کہنے لگے, مجھے معلوم ہے, سب کچھ معلوم ہے, یہ انعام و اکرام ان کی جھوٹ کی وجہ سے ان کو دے رہا ہوں, اگر سچ کہتے تو اپنی جان بھی ان کو دے دیتا.
حاجی صاحب آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, بس وہ کہیے.
ٹھیک کہا. اس جھوٹے جہیز اور فالتو کی نیاز اور زبردستی کے انجمن کے چکر میں بہت سے لوگ آتے ہوں گے, موقع پرست اب بھی ہیں. خیال رکھنا اور اپنے جاسوس کو بھی بتا دینا کہ اگر ان لوگوں میں سے کوئی سچ بولے تو اس کو باقی لوگوں کی طرح جھوٹ مت کہنا, اگر کہا تو جان لینا قیامت کے دن. اللہ ایسا دن نہ لائے, پھر شداد نمرود اور ابو سفیان کے ساتھ پالا پڑے گا. چلتا ہوں. بھائی رحیم, اب کوئی راستہ نہیں, دوسروں سے اکٹھا کرنا پڑے گا, خدا پر بھروسہ ہے. نہیں بھائی, بنجر زمین سے کچھ نہیں نکلتا. ہم سمجھتے تھے کہ ہم ہی سخت ہیں. دیکھو انشاءاللہ ہو جائے گا. اب اس کام کی ذمہ داری آپ پر, آپ بالکل پریشان نہ ہوں. میں ہوں نا, ہاشم بھی ہے, سید جواد کو بھی لے آئیں گے. پہلے ابو القاسم کو ڈھونڈنے دیں. جب تک ہاشم کے پاس ٹیبلٹ اور میرے گاڑی میں پیٹرول ہے, چلتے رہیں گے. چلیں ٹھیک ہے, آپ کا بہت شکریہ.
السلام علیکم بیٹا, کیسے ہو میرے شیر؟
آپ دادا سے ناراض ہے کیا؟
ناراض کیا ایسا ہو سکتا ہے, میں, تم, امی, دادی, زینب, پھوپی, دادا, ہم سب ایک فیملی ہیں. کیا فیملی کبھی ناراض ہوتی ہے؟
تو پھر دادا آتے کیوں نہیں؟
کیونکہ ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ تمہیں آرام کرنا ہے. دادا جان تمہیں اتنا چاہتے ہیں کہ تمہارے آرام کرنے میں تمہیں تنگ نہیں کرنا چاہ رہے.
میں ٹھیک تو ہو جاؤں گا نا.
ویزوں کا کیا ہوا, کہیں دیر نہ ہو جائے.
اس کا ڈاکٹر جانتا ہے, جو کچھ ہم سے متعلق تھا ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے, باقی رہ جاتا ہے ایمبیسی کا معاملہ کہ وہ ہمیں ویزا دیتے ہیں یا نہیں. ہاں بیٹا ٹھیک ہو جاؤ گے, ہو سکتا ہے تھوڑا ٹائم لگے لیکن ٹھیک ہو جاؤ گے.
یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نہ دیں؟ کچھ بھی ہو ہمیں اس بچے کو ملک سے باہر لے جانا ہے, چاہے غلط طریقے سے ہی صحیح.
کیا کوئی لاس اینجلس کا گانے والا ہے جو ہم اس کو چوری چھپے لے جا سکیں؟ یا ایک بھیڑ کی کھال اس پر ڈال کر امیر عباس کو بارڈر لے جائیں گے اور بولیں گے یہ بھیڑ ہے, کہیں گے یہ بھیڑ ہے, امیر عباس کو بس آواز نکالنی ہوگی بے بے بے.
کہیں میری گردن ہی نہ کاٹ دے بکرا سمجھ کر.
ارے میں مر گیا ہوں کیا, شیر کی طرح اپنے بھیڑ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا, کسی کو اس پہ غلط نظر نہیں ڈالنے دوں گا.
دادا جان بھی آئیں گے.
دادا جان یہیں سے ہمارا خیال رکھیں گے.
دادا جان آج نہیں آئیں گے کیا؟
کیوں نہیں آئیں گے, ان کا کام ختم ہو جائے تو ضرور آئیں گے.
यानी वो यहां से कहीं भाग गए हैं? ये कैसे मुमकिन है?
माफ कीजिएगा, जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चे बन जाते हैं, बहाने बनाते हैं, नाराज हो जाते हैं, परेशान रहते हैं, अपने घर से निकाल दिए जाते हैं। बाज़ औकात तो बिल्कुल ही भूल जाते हैं कि कितने साल के हैं और नर्स से शादी करना चाहते हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले एक 75 साल बूढ़े शख्स ने एक 27 साल नर्स से शादी का इजहार किया। जब ना का जवाब सुना तो नाराज होकर चले गए। अपनी बीवी या शौहर की कब्र पर चले जाते हैं या अपने पोते नवासों के घर चले जाते हैं। मुख्तसर ये है कि जब ठोकर लगती है और उनके हवास ठिकाने आते हैं तो खुद उल्टे पांव वापस आ जाते हैं, नहीं तो उनकी औलाद उनको दरवाजे पर छोड़कर बगैर कुछ कहे चली जाती हैं।
ये अबुल कासिम अभी तक भागे भी
5 बार।
कुछ पता है वो कहां भाग कर जाते हैं?
2 बार तो मुझे मालूम है। एक बार तो अपनी बीवी की कब्र पर गया था और एक बार शहर के पार्क में। बाकी 3 बार के बारे में उनके बेटे ने हमें कुछ नहीं बताया।
मतलब आप लोगों ने उनको तलाश नहीं किया?
अरे जनाब, हम यहाँ कोई जेलर तो है नहीं और ये जेल भी नहीं है, हमारे पास कोई वसायल भी नहीं है। ले देकर एक पिकअप है जिसके पीछे एक डिब्बा रखकर एम्बुलेंस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। उसके जरिए खाना लाते हैं, अपने दफ्तरी के काम उसके जरिए करते हैं, खरीदारी करते हैं, और फिर अगर कोई बूढ़ा बीमार हो जाए या खुदा न खास्ता इंतकाल कर जाए तो उसको अस्पताल तक पहुंचाते हैं। अब इन बातों के बाद आपको हमसे क्या उम्मीद है?
मुझे अंदाजा है कि आप लोगों पर हद से ज्यादा बोझ है और सख्त भी है, लेकिन ये जानना चाहता हूं कि क्या आप लोगों की इन बुजुर्गों के सिलसिले में कोई जिम्मेदारी?
सिर्फ कागज की हद तक और यहां भी एक खास हद तक, लेकिन वैसे तो हमारा पाला ऐसे बुजुर्गों से है जिनको कोई अपने पास नहीं रखना चाहता। बाज लोग ऐसे हैं जब अपने दादा या दादी की मौत की खबर सुनते हैं तो सुकून की सांस लेते हैं। जिम्मेदारी उस वक्त है कि जब कोई हमसे सवाल करे। यही अबुल कासिम साहब, अगर आप इनके बारे में पूछने नहीं आते तो कौन पूछने आता?
बुढ़ापा भी बुरा मरज है, यानी उसके बेटे के लिए कोई अहमियत नहीं कि उसके बाप के साथ क्या होता?
जरूर कोई अहमियत नहीं होगी, तभी तो यहाँ छोड़कर चला गया।
हो सकता है कभी कोई फंसा हुआ हो, परेशान हो, कुछ ना कर पा रहा हो, या कोई और वजह की बिना पर मजबूर हो अपने अजीज तरीन शख्स रिश्तेदार को लाकर यहाँ पर छोड़ जाए। लेकिन ये सब जालिम थोड़ी होते हैं।
जी जी, सबके दिल में मोहब्बत है, लेकिन एक कब्र में सुकून मिलता है और एक यहाँ तीमार खाने में।
क्या अबुल कासिम की कोई तस्वीर दे सकते हैं ताकि हम थाने के जरिए उनको ढूंढ सकें?
क्यों नहीं, जब वो खुद यहां नहीं है तो तस्वीर हमारे पास किस काम की?
हाशिम, हाशिम इधर आओ, बैठो, इधर बैठो, बैठो बैठो बैठो। टेबलेट कहाँ है तुम्हारी? खोलो मुंह, खोलो मुंह, खोलो भाई। पानी है तुम्हारे पास?
जी जनाब।
खुदा के लिए जल्दी करो।
लीजिए।
ठीक, लो लो पानी पियो।
ठीक।
जनाब अगर इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो इनको यहीं छोड़ दें, अपने साथ मत ले जाएं, मुसीबत हो जाएगी आपके लिए।
एक सुपर डीलक्स डबल बेड का कमरा तैयार रखना, दोनों साथ आएंगे।
मुझे माफ़ कीजिएगा, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, लेकिन इंसान ख़ुद अपने पाँव से चल कर यहाँ आए तो बेहतर है, बजाय इसके कि बीवी बच्चे यहाँ छोड़ कर भाग जाए, समझ रहे हैं ना? कम से कम इस तरह इज्जत तो बच जाएगी।
बेटा वो जो जलील होता है नाखलफ औलाद है, ना कि बूढ़े माँ बाप, उनकी भी बारी आएगी। कोई भी जवान ऐसा नहीं जो बूढ़ा ना हो।
आप ठीक कह रहे हैं, मैंने देखा है हाजी साहब, मैंने देखा है यहाँ के जिस हाथ से दोगे उसी हाथ से वापस लोगे।
मैं क्या कह सकता हूँ, हमारा एक दोस्त था, उसका नाम अबुल कासिम है, उसने अपने माँ बाप के साथ बुरा रवैया नहीं रखा। मैंने खुद देखा था कि किस तरह अपने वालिदैन का इज्जत और एहतराम करता था। ये जगह उसके लिए हरगिज़ नहीं थी।
जी भाई मैं जानता हूँ इन्हें, इत्तेफाक से दो तीन बार यहाँ से चुपके से जाने भी दिया था, लेकिन जाकर वो फिर वापस आ जाते थे।
कहाँ जाकर वापस आते थे?
पहले अपनी बीवी की कब्र पर जाते थे, अलबत्ता बड़े कब्रिस्तान में नहीं, बोल रहे थे यहीं कहीं शहर में है।
चीजर जाता है?
हाँ हाँ यही चीजर, पहले अपनी बीवी की कब्र पर जाते थे, वहाँ अपनी बीवी से बातें करने के बाद अपने बेटे के घर जाते थे अपने पोते को देखने के लिए। पोता भी बड़ा हो गया है, कह रहे थे कि अब उसकी शादी होने वाली है।
बेटे का घर मालूम है?
उसका एड्रेस तो ज़रूर फाइल में होगा, अलबत्ता अगर गलत एड्रेस ना दिया हो तो।
गलत भी दिया हो तो कुछ ना होने से बेहतर है। यहीं बैठो मैं भी आता हूँ, ये तस्वीर लेना
था।
बेटा ये बताओ हाशिम साहब ठीक हो गए?
पता नहीं, रोज तो बाबा के साथ इधर उधर टहलते हैं।
नासिर ने तुमसे कुछ नहीं कहा?
मेरी माँ, मैं उस हॉस्पिटल में रोज सैकड़ों लोगों को तो देखती हूँ।
तो नासिर भी उन्हीं में से एक है?
नासिर साहब हमारे मोहल्ले में रहते हैं और हाशिम चचा के बेटे हैं। दो तीन बार किसी काम में मदद मांगी, मैंने मदद कर दी, बस।
लो अब बुरा क्यों मान रही हो बेटा, अब तुमसे दो जुमले बात भी नहीं कर सकती। एक वो हुसैन है जो फंसा हुआ है, नरगिस उससे ज्यादा परेशान, हाजी साहब भी सुबह जाते हैं रात में आते हैं, और वो बेचारा मासूम बच्चा भी हॉस्पिटल में पड़ा है। मैं भी तुम्हें आधे घंटे के लिए तो सिर्फ देखती हूँ, अगर तुमसे दो जुमले बात भी ना करूँ तो मैं तो मर जाऊंगी।
मैं आप पे कुर्बान जाऊँ, पता नहीं सुबह से क्या हुआ कि नासिर की रट लगाए, इधर जाऊँ तो नासिर कहती हूँ, उधर जाऊँ तो नासिर कहती है।
इसलिए बेटा कि जिस चीज से तुम कतरा रही हो मैं उसको अच्छी तरह से समझ रही हूँ।
किस चीज को?
उस लड़के की गोट तुम्हारे पास फंसी हुई है।
किसकी गोट?
अरे बाबा,
हाजी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम।
अजीब बात है, मुझे नहीं पता हाजी साहब आप ऑफिसर हैं, काउंसलर हैं, मिनिस्ट्री में हैं, कहाँ काम करते हैं, जब तक मुझे नहीं पता चल पाया।
क्या बताऊँ, अभी तक तो हमारे इसी अधूरे काम पर ताले पड़ गए हैं, अभी तो हम बेकार और आवारा फिर रहे हैं।
लो ये कैसी बेकारी है जो आप रात में चांद की तरह नमूदार होते हैं।
चांद? आसमान का चांद, आसमान का चांद, शायद आप ठीक कह रही हैं। और ये इस साल का मुहर्रम, मेरे माबूद, कोई इनायत, कोई मेहरबानी, कोई नजरे करम जो हमने खराब कर दिया है तो उसको ठीक कर दे, जो हम नहीं समझ रहे तो हमें बता दे। मुझे अमीर अब्बास की शिफा तुझसे चाहिए परवरदिगारा, तुझको अमीर के नाम के हकीकी मालिक की कसम, तुझे अब्बास के नाम के हकीकी मालिक की कसम, हुसैन की औलाद, असाबे हुसैन की कसम, अजादारी हुसैन की कसम, मेरे खुदा तू ही मेरे से आदिल की मदद कर दे, उस बेचारे मासूम बच्चे को मौला के वास्ते शिफा दे दे, शिफा दे दे।
السلام علیکم حسین بھائی.
وعلیکم السلام ناصر.
السلام علیکم ناصر صاحب.
وعلیکم السلام. زینب صاحبہ گھر پر ہیں؟
سب خیریت تو ہے.
200 ملی گرام ہائیڈروکورٹیزن انجیکٹ کر چکی ہوں ڈاکٹر صاحب. میرے خیال میں ان کی اوور آل کنڈیشن بہتر ہے. چچا ڈاکٹر صاحب پوچھ رہے ہیں آپ بہتر ہیں؟
بہت بہت بہتر. ڈاکٹر سے شکریہ ادا کر لینا بیٹا.
اب یہ تو جب آپ ان سے ملیے گا تبھی کہہ دیجیے گا. نہیں ان کا بلڈ پریشر کنٹرول میں ہے میرے خیال میں تو. نہیں جی. اچھا 10 ٹھیک ہے؟ 25 ٹھیک ہے. ضرور بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.
چلو الحمدللہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا.
اب دیکھو کب اوپر والوں کا زور چل جائے.
اوپر نیچے کیا ہے بابا جان, آپ تو اپنی اصل دوائی بھول گئے تھے. لیجئے پانی.
شکریہ مجھے پیاس نہیں ہے. شکریہ.
حاجی صاحب آپ لیجئے.
بڑھاپے میں بیٹا درد و مصیبت, دل گردے میدے اور آتوں جیسی چیزوں سے پہلے انسان کے ذہن پر حملہ کرتے ہیں. نہیں اب اب ان دماغ پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. ٹیبلٹ اور دوائیں نہیں کھاتا, سمجھتا ہوں کھا لیا ہے. کھا لیا ہوتا ہے لگتا ہے نہیں کھایا ہے, ورنہ مجھے کوئی شوق تھوڑی ہے تم لوگوں کو زحمت میں ڈالوں.
میں تو ہوں بابا جان, چائے ناشتہ جب کرا سکتا ہوں تو دوا وغیرہ بھی دے دوں گا. سر آنکھوں پر
بھلکڑ انسان بوڑھے انسان سے بھی گیا گزرا ہے. تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے آواز بہت بجائے؟
ارے بابا, بابا جان گھڑی ہے, موبائل ہے, کیلنڈر ہے, کاغذ بھی ہے, کچھ نہ کچھ کر لوں گا تاکہ دوا وقت پر دے سکوں.
ایک بوڑھا ہے اور ایک اندھا, اندھا دوسرے اندھے کو سہارا دینے آیا ہے. مرتضیٰ اگر میں چل بسا تو میرے بیٹے کو اس طرح چھوڑ مت دینا. یہ سوچنا کہ یہ حسین ہے, اس کے لیے باپ بن جانا, اسے سہارا دے, اس بے مقصد زندگی سے اسے نجات دلا دینا, اس کو کچھ بنا دینا. یہ جو میں اس آخری دنوں میں اس دنیا سے جا جا کے واپس آ رہا ہوں اس لیے کہ اس بچے کے لیے پریشان ہوں.
بابا جان میرا کام ختم ہو گیا, اگر چلنا ہو چلیں.
یہ بچہ بڑا ہو گیا ہے, مرد بن گیا ہے, ایک قبیلے کا سردار ہے, اس کو بڑے سے کیا سروکار. اگر بہت پریشان ہو تو خود ہی اپنے کام نپٹا کر جانا ہے, البتہ 120 سال کے بعد.
بہرحال ناصر تکلف مت کرنا, اگر اللہ نہ کرے رات میں بھی کچھ ہو جائے, انشاءاللہ نہیں ہوگا, ہمیں ضرور بلا لینا. ہمارے گھر میں آج کل کوئی نہیں سوتا, شب بیداری کرتے ہیں, یعنی جب بھی دروازہ کھٹکھٹاؤ گے ہمارا دروازہ تمہارے لیے کھلا ہے.
یہ محبت ہے تم لوگوں کی, لیکن آئے دن تم لوگوں کو زحمت دیتا رہتا ہوں یہ اچھا نہیں لگتا.
ارے ایسی کوئی بات نہیں
بیٹا, اس کے بعد بھی انشاءاللہ ایسا ہی رہے گا. انسان کے اتنے اچھے محلے والے اور دوست ہوں تو ظاہر ہے انہیں کو تو زحمت میں ڈالے گا.
یہ زور بازو ماشاءاللہ حسین کو فالتو میں نہیں دیا ہے اللہ نے, ایک مرتضیٰ اور پورا محلہ, سب لوگوں میں ایک بزرگ ہے, ساری خدائی ایک طرف, مرد قلندر ایک طرف.
خدا حافظ ہاشم چچا.
خدا حافظ.
خدا حافظ.